मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 7 मार्च 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर तक होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं सतीश जायसवाल, आप सिंगरौली मध्य प्रदेश से हैं, समीर कुमार आप चितरंजन पश्चिम बंगाल से हैं और सिद्धार्थ गौतम आप भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। तो सतीश, समीर और सिद्धार्थ आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों अब मैं कुछ बातें अपने उन स्टूडेंट्स से करना चाहूंगा जो बस कुछ ही दिनों के अंदर भोपाल पहुंचने वाले हैं। देखिए मैंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया कि कुछ ही दिनों के बाद, बाद शब्द अब गायब हो चुका है, अब हम अंदर में आ चुके हैं, कुछ ही दिनों के अंदर जो भोपाल पहुंचने वाले हैं। मित्रों मैंने आपसे इससे पहले कुछ बातें की हैं और मुझे यकीन है कि उन पर आपने अमल करना शुरू कर दिया होगा और मैं जानबूझ करके इसे हर बार आपको याद इसकी दिलाता रहता हूं, तो इसके लिए दोस्तों मैं माफी चाहूंगा। अब मैं आपको एक दूसरी बात बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स, और वह आपकी जर्नी की बात होगी। जर्नी की बात इस रूप में होगी कि आप सबने अपने अपने रिजर्वेशन करा लिए होंगे और एक समय ऐसा आएगा जब आप ट्रेन में बैठेंगे, बस में बैठेंगे, जिसमें भी आपने अपना रिजर्वेशन कराया है या यात्रा करने का मन बनाया है उसमें आप बैठ जाएंगे। मित्रों अब आप इस जर्नी को कैसे पूरा करेंगे? देखिए इस जर्नी में आपका वक्त लगेगा, आपके जीवन के जितने भी घंटे हैं, जितने भी दिन हैं, जितने भी वर्ष हैं, उसमें से कुछ हिस्सा इस यात्रा में खपेगा, राइट? वो वापस नहीं आएगा, समय तो कभी वापस आता ही नहीं है। तो अब सवाल यह है कि अब आप इस समय का उपयोग कैसे करें। देखिए आप सब भोपाल आ रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कैसे की जाए यह सीखने, जानने और समझने आ रहे हैं, यह आपका मकसद है। भोपाल पहुंचना आपका डेस्टिनेशन है और उस इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए या इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो आप जर्नी कर रहे हैं वो एक मीडियम है, है कि आप यात्रा के जरिए ही आप यहां तक पहुंच पाएंगे। तो आपकी जो यात्रा है वो यहां तक पहुंचने का एक माध्यम है और यह माध्यम आपके जीवन के कुछ क्षण लेगा, कुछ समय लेगा, बिना समय के तो कुछ काम होता नहीं है। अब आपके पास दो उपाय हैं कि आपको चूंकि पहुंचना है तो आप कैसे भी पहुंच जाइए, और दूसरा उपाय यह है कि नहीं मैं इसे इस यहां भी सीखते हुए पहुंचूंगा, यहां भी मैं अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए पहुंचूंगा, या यूं कह लीजिए कि मैं इस समय का भी इस्तेमाल करूंगा, इस समय को मैं जाया नहीं होने दूंगा, व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और मित्रों मैं समझता हूं कि अभी जो मैंने बात कही है कि मैं इस समय को भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं इससे सीखूंगा और साथ ही साथ मैं इसको एंजॉय भी करूंगा, सीखूंगा और एंजॉय भी करूंगा। सीखना कोई बोझ नहीं है, सीखना प्रिविलेज है। तो दोस्तों आप ऐसा कैसे करेंगे, बस इसके लिए मैं थोड़ी सी कुछ बातें आपसे करने जा रहा हूं। दोस्तों आप अपने मन में संतुलन की स्थिति लाइए, मन से आप आशंका और भय को बिल्कुल मिटा दीजिए, बिल्कुल मिटा दीजिए। आप अपने घर से निकल रहे हैं, आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो पहली बार निकल रहे होंगे, आप अकेले निकल रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर से निकलते समय आप अकेले हो सकते हैं लेकिन जैसे ही ट्रेन में बैठेंगे या बस में बैठेंगे आप अकेले नहीं रह जाएंगे, ढेर सारे लोग आपके साथ होंगे। और पता लगा कि वो सब के सब अकेले अकेले ही बैठे थे और अब ढेर लोगों के साथ हो गए। अकेले के विचार को जैसे ही आप मन से निकालेंगे आपके मन से भय, आशंका, तनाव, दबाव खत्म हो जाएगा, आपका सफर शुभ ही होगा। बस आपको थोड़ी सी सतर्कता रखनी है कि सामान इधर उधर गायब ना हो जाए, ट्रेन छूट ना जाए, बस और कुछ नहीं होना है। तो आप देखेंगे कि शुरुआत अगर आप इस प्रैक्टिकल की करेंगे तो किस तरह से आपकी जितनी भी आशंकाएं थी, आपके जितने भी भय थे वो बेकार थे, क्योंकि जब तक आप इस भय और आशंका से मुक्त नहीं होंगे आपके अंदर संतुलन नहीं बनेगा, मन के अंदर संतुलन आइए। घर छोड़ रहे हैं कोई बात नहीं, लौट के उसी घर में वापस आना है। आपके घर वालों की आंखें डबडबा आ रही हैं, गला भी भर आया है, आपको विदा करते हुए उन्हें तकलीफ हो रही है, कोई बात नहीं, अच्छा है, वो अपने इमोशंस को दिखा रहे हैं, आपसे अपना जुड़ाव व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनके मन में कहीं ना कहीं खुशी भी है कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरा जो बच्चा है, लड़की है वो या लड़का हो, किसी अच्छे काम के लिए जा रहा है, अच्छे उद्देश्य के लिए जा रहा है। उसे भी अपनी कमजोरी मत बनाइए, उनके आंखों की डबडबाहट को अपनी वीकनेस में तब्दील मत कीजिए, उसके शक्ति में तब्दील कीजिए। उनको याद रखिए कि उन आंखों को मुझे जवाब देना है, वो आंखें मुझसे जो पूछ रही हैं, जो जानना चाह रही हैं, मैं जाकर के उन्हें बताऊंगा और उनके उन आंसुओं को मैं हंसी में तब्दील कर दूंगा। इस तरह की सकारात्मक भावना अपने दिमाग में लाइए, अपने अंदर जिम्मेदारी पैदा कीजिए कि मैं एक काम के लिए जा रहा हूं और जिसके लिए मुझे भेजा जा रहा है, जो दायित्व मुझे दिया जा रहा है, मैं उस दायित्व को पूरा करके दिखाऊंगा और आकर के फिर आप उनसे मिलेंगे ही। इन सब विचारों के कारण आप देखेंगे कि अंदर आपके संतुलन आता चला जाएगा, और जितना ज्यादा आपके अंदर संतुलन आता चला जाएगा, आप मान करके चलिए कि आपने यात्रा की मानसिक पृष्ठभूमि तैयार कर ली है, आपकी यात्रा उतनी ही अब सुखद होने वाली है। दोस्तों, जब आप घर से निकलेंगे, आप किसी चीज से भी निकले, चाहे आप ऑटो लेकर के निकले या घर वाले आपको छोड़ने जाएं, तो घर वाले छोड़ने जा रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप ऑटो से निकले तो यहां से आपका अब आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। आपका जो व्यवहार है, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे आप ट्रेन बस में बैठ जाएं तो आपके बगल में बैठे हुए लोग हों, बगल में बैठे हुए लोग न भी हो तो ट्रेन में जितने भी लोग हैं उन सबके प्रति बहुत ही सहृदयता का और सहयोग का होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, सहृदयता का, यानी कि आपके अंदर कोई झुंझलाहट नहीं होनी चाहिए, आपको उनकी गरिमा का सम्मान करना है, और साथ ही साथ अगर उन्हें किसी मदद की जरूरत है तो आप उनको मदद देने के बारे में भी सोचिए, केवल सोचिए ही मत, यानी कि आप उनकी मांगने पर ही मदद करें। मान लीजिए कि आपके सामने कोई महिला बैठी हुई है, उसके साथ सामान है, बच्चा भी है, और उसे स्टेशन पर उतरना है, तो वो आपसे कहने में संकोच करेगी। भारतीय समाज कुछ इसी तरह का, वैसे भी संकोच होता है कि मैं बोलूं कि मेरा सामान जरा सा बाहर निकाल दो या मेरी मदद कर दो, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। आप अपनी तरफ से ऑफर दीजिए कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप नीचे उतर रहे हैं कोई सामान अपने लिए खाने के लिए लेने के लिए, तो वहां कोई वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए या दूसरे भी कोई बैठे हुए हैं, तो आप उनसे कहिए कि क्या आपके लिए भी कुछ लाना है, बताइए, मैं ला करके आपको देता हूं। आप कुछ खोल करके, मान लीजिए कि आप खाने के लिए ले गए हैं और उसे खोल करके खाना शुरू करते हैं, सामने वाले को भी थोड़ा सा ऑफर कीजिए, आप लेंगे, आप देखेंगे कि 99% मामलों में वो मना ही करेगा, लोग लेते नहीं है, मना करते हैं, लेकिन आपका जो ये एक्शन है, आपका सिर्फ ऑफर करना कि क्या आप लेंगे, आइए आप भी ले लीजिए थोड़ा सा, उनके मन में आपके लिए पता नहीं कितने गुना सम्मान का भाव पैदा कर देगा। अब वो बिना कहे ही आपके सहयोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे और आपके बारे में अच्छा अच्छा सोचना शुरू कर देंगे। आप उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि उस कंपार्टमेंट का जो माहौल ही है वो बड़ा सकारात्मक हो जाएगा और पूरी जर्नी आपको फूल के समान कोमल और सुगंधित लगने लगेगी। करके देखिए, आपकी जर्नी कितने भी घंटे की हो, 10 घंटे की, 15 घंटे की, 25 घंटे की, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये घंटे कब गुजर गए, और तब आपको टाइम मैनेजमेंट का शायद एक बड़ा चमकीला सूत्र समझ में आ जाए। तो मित्रों, यह आपको करना है, राइट? अभी 2 दिन और बाकी हैं, 2 दिन भी मैं आपसे इस बारे में लगातार बातें करता रहूंगा। मित्रों, मैं जो मेरे दूसरे फ्रेंड्स हैं, युवा फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगा इस बात की कि मैं थोड़ा सा वक्त अब उन स्टूडेंट्स को अतिरिक्त रूप से दे रहा हूं जो यहां क्लासेस के लिए आने वाले हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे ही हमारी क्लास शुरू हो उनकी जो मानसिक पृष्ठभूमि है वो बड़ी उपजाऊ बन चुकी हो, तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे इसके लिए आप माफ करके चले, थोड़ा सा मुझे स्पेस दें ताकि मैं उनसे भी कुछ मुखातिब हो सकूं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं आपसे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही के बारे में बात करूंगा, बहुत ही थोड़ी सी चर्चा में करूंगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन आप कह लीजिए, मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में आपसे थोड़ी सी कुछ बातें करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप सबके लिए एक जरूरी कुछ पॉइंट्स बता दूं जो इंटरव्यू से संबंधित हैं। दोस्तों मुझे जो मेल मिले हैं उसमें एक मेल है राजा राम अग्रवाल का जो दिल्ली से हैं और एक मेल है विनय मौर्य का जो बलिया उत्तर प्रदेश से हैं और हमारे फोर्थ बैच के स्टूडेंट भी रहे हैं। ये अभी यूपीएससी में जा रहे हैं और जो इंटरव्यू चल रहे हैं उन इंटरव्यू में वो लोगों से स्टूडेंट से मिल भी रहे हैं, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन मुझे भेजे हैं। तो नो डाउट कि जो स्टूडेंट अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे, जिनका इंटरव्यू कॉल आया होगा, उनके लिए भी ये थोड़ा सा फायदेमंद होगा और आप सबके लिए भी फायदेमंद होगा, चाहे आप पहली बार ही प्री में बैठ रहे हो या कह लीजिए कि अगले साल आप प्री में बैठ रहे हो। वो इस रूप में कि आपको पता लगेगा कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, किस तरह से तैयारी की जानी चाहिए। तो मित्रों मैं कंबाइंड कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए जो क्वेश्चंस पूछे गए टॉपिक में बता रहा हूं, जुडिशियल क्राइसिस, बायोटेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इन्वेंशन में अंतर, इनोवेशन और जुगाड़ में अंतर, दलाई लामा और भारत सरकार। एक स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा था तो उससे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद है दोस्तों इंडो म्यांमार रिलेशन, डोकलाम, हिंदू विमेन इलेक्टेड इन पाकिस्तान, आधार एवं प्राइवेसी, बजट, मालदीव क्राइसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक साथ चुनाव, राज्य और केंद्र के एक साथ चुनाव। ये कुछ प्रश्न उन्होंने मेरे पास भेजे हैं। मित्रों मैंने केवल एक संक्षिप्त आपको इसकी झलक दी है, वो इस रूप में कि अब देखिए कि बहुत साफ तौर पर आपको लग रहा होगा कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब करेंट से रिलेटेड टॉपिक हैं। और सीधी सी बात है कि अगर आप करंट से जुड़े हुए हैं तो आपको इंटरव्यू मेंस के लिए आशंकित होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप बड़े आराम से उसे हैंडल कर सकते हैं। बस आपको करंट से जुड़े रहना पड़ेगा और थोड़ा सा उस पर चिंतन मनन भी करना पड़ेगा, केवल पढ़ने से बात नहीं बनेगी, उसे थोड़ा सा समझना भी होगा। और डेली ऑडियो लेक्चर में मित्रों मेरी यही छोटी सी विनम्र कोशिश रहती है। फ्रेंड्स आइए अब मैं कुछ न्यूज के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आपने न्यूज सुनी कि मेघालय में और त्रिपुरा में दो बड़े यंग चीफ मिनिस्टर बने हैं, यंग चीफ मिनिस्टर, राइट? मैं नाम नहीं बता रहा हूं, आप अखबार में पढ़ लीजिएगा। लेकिन मित्रों एक बड़ी बात है, अब आप देखिए कि कभी कभी होता यह है कि राजनीति में लोग नहीं आना चाहते हैं या राजनीति पर जो पुराने लोग हैं या जो वृद्ध लोग हैं उनका अधिकार है, लेकिन आप धीरे 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 देख रहे हैं कि यंग लोगों का जब मतलब काफी कुछ प्रवेश होने लगा है। अब आप राहुल गांधी जी को देख लीजिए, चलिए अब उतने यंग तो नहीं रहे लेकिन हैं, उनकी जो टीम है, आप सचिन पायलट के बारे में सुनते हैं, ज्योतिरादित्य जी के बारे में सुनते हैं, तो ये सब यंग जनरेशन के लोग हैं। तो राजनीति में किस तरीके से यंग लोगों का प्रवेश हो रहा है और उसका राजनीति पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मुझे लगता है कि एक छोटा सा विषय है जिस पर आप थोड़ा सा वक्त लगा सकते हैं सोचने के लिए, तो आप इस पर सोचिए, मैं कुछ भी कहने नहीं जा रहा हूं। श्रीलंका की खबर आपने पढ़ी कि किस तरह से श्रीलंका के कुछ जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, कैंडी जिले में कर्फ्यू लगाया गया है, और कैंडी मुझे याद आ रहा है 3-4 साल पहले हम लोग वहां एक रात हम लोगों ने वहां बिताई थी, वहां भी एक क्लैशेस चल रहे हैं, क्लैशेस का कारण है मुस्लिम समुदाय और जो बौद्ध समुदाय है। एक छोटी सी घटना को लेकर के बात बढ़ी और बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गई कि अब वहां कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो एक छोटी सी जानकारी है क्योंकि श्रीलंका की घटना, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, तो इसीलिए थोड़ी सी जानकारी बस रहे, ज्यादा अभी उस पर इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मित्रों आपने शेयर मार्केट में देखा कि लगातार कुछ दिनों से शेयर मार्केट गिर रहा है और कल भी उसमें गिरावट आई है। अभी जो शेयर मार्केट में गिरावट आ रही है इसका बहुत बड़ा कारण है बैंक घोटाला। देखिए बैंक जो है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है और अगर उसी में घोटाला हो जाए तो डेफिनेटली वो बहुत चिंता करने की बात होती है। तो ये छोटी छोटी खबरें थी मित्रों। अब जो मेरा मुख्य विषय है राइट टू इन्फॉर्मेशन को मैंने लिया है, वो खासकर उसके पीछे जो मकसद है इस विषय को चुनने का जो आधार है वो आपने न्यूज में ही सुना कि कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसके भवन का उद्घाटन किया है और भवन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कुछ बातें कही हैं जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने बात कही वह है पारदर्शिता और जवाबदेही की बात, कि सरकार को पारदर्शी बनाया गया है और जवाबदेह भी बनाया गया है, यानी कि ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल लोगों के प्रति बनाया गया है। उन्होंने एक दो बातें और भी कही, पहले मैं वो बात पूरी कर लेता हूं। उन्होंने कहा कि हमें अपने समाज को एम्पावर्ड करना है, हमें समाज का सशक्तिकरण करना है। देखिए, समाज का सशक्तिकरण जब हम करने की बात करते हैं तो उसका आर्थिक पक्ष एक होता है, डेफिनेटली होता है कि आप अगर हमारा समाज बहुत गरीब है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो फिर उनके सशक्तिकरण में बहुत मुश्किल होगी, वो एक पक्ष है ही। लेकिन आपको पॉलिटिकली भी उन्हें सशक्त बनाना होता है, और जो ट्रांसपेरेंसी है और जो आप कह लीजिए कि सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है, या कह लीजिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ला करके सरकार ने एक तरीके से हमारे नागरिकों का सशक्तिकरण ही किया है कि वो सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते हैं, तो इससे सरकार पर भी नियंत्रण रहता है। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि इससे सरकार भी सतर्क रहती है, जब पारदर्शिता और जवाबदेही आ जाती है तो सरकार को भी लगता है कि नहीं, उसे अच्छे तरीके से काम करना है। देखिए, मैं तो यहां जो ट्रांसपेरेंसी है इसे आप राइट टू इन्फॉर्मेशन से जोड़ करके देखिए, है ना, शब्द अलग अलग है लेकिन दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि सरकार खुली किताब की तरह, आप आइए और पढ़िए, इसका मतलब है कि आप कोई भी सूचना उससे मांगिए तो वो सूचना आपको अवेलेबल कराएगी। दोनों ही स्थितियां इसमें हैं। पहली बात तो है कि सरकार अपनी तरफ से ही सारी सूचनाएं उपलब्ध कराए, और आप देखते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में ही ये व्यवस्था की गई है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो अपनी सूचनाओं को ओपन करे, यानी कि वेबसाइट पर बकायदे वो सारी सूचनाएं डालती रहे। पहले की तरह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट काम नहीं करेगा कि आप उन्हें दबा करके रख सकते हैं, तो आप अपनी तरफ से सूचनाएं देते रहिए, और अगर इसके बाद भी नागरिकों को कुछ और सूचना की जरूरत है तो वो फिर आपसे मांगेगा और आपको उन्हें उपलब्ध कराना होगा। तो अभी तक जो एक तरह से कहिए कि फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन था, उसको उन्होंने एक तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन में सरकार ने 2005 के एक्ट के जरिए कन्वर्ट कर दिया, जो एक बहुत बड़ी बात थी। मैं तो दूसरी बात जो उसमें प्रधानमंत्री जी ने कही कि लगभग 1400 कानून उन्होंने खत्म किए हैं जो पुराने कानून थे, ये भी एक छोटा सा मुझे लगता है कि टिप्पणी करने के लिए एक टॉपिक आपका बनता है कि किस तरह से हम ओल्ड जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस थे उससे गवर्न हो रहे थे, या ये कह लीजिए कि अगर वो बेकार भी पड़े हुए थे तो हमारा ध्यान उन पर नहीं जा रहा था, तो इस पर थोड़ा सा बस विचार कर लीजिएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो उन्होंने एक और बात कही है दोस्तों, वो ये है कि निहित स्वार्थों के लिए अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मतलब होता क्या है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ऐसी ऐसी सूचनाएं मांग ली जाती हैं जिनसे सच पूछे तो उनका कोई सीधा संबंध नहीं होता, उनका कुछ लेना देना भी नहीं होता, एक तरीके से जो हम लोग बोलचाल की भाषा में शब्द इस्तेमाल भी करते हैं, मित्रों, ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। तो इसकी तरफ उन्होंने इशारा भी किया। अब देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन पे इस तरह के क्वेश्चंस तो पूछे नहीं जाएंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके क्या क्या तत्व हैं, सरकार ने उसके लिए क्या व्यवस्था की है, कम से कम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में तो हम इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं, निहित स्वार्थों के लिए अधिकारों का दुरुपयोग या समाज के सशक्तिकरण में इसकी भूमिका, इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जो अकाउंटेबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी तो सीधे नहीं, ट्रांसपेरेंसी तो सीधे सीधे राइट टू इन्फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है वो सीधे सीधे नहीं, लेकिन इसका भी जुड़ाव उससे है, क्योंकि सरकार से आप पूछ सकते हैं कि भैया ये बांध 5 साल में बनना था और इसके लिए 100 करोड़ रुपए पारित किए गए थे, तो अब ये 7 साल हो गए हैं और ये अभी तक नहीं बना है और इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, तो आप बताइए, तो अकाउंटेबिलिटी से जुड़ गया ये, तो ये दोनों कहीं ना कहीं उसी से जुड़े हुए हैं। मित्रों, अब क्विकली मैं आपको केवल 2 प्रश्न बताना चाहूंगा लेटेस्ट जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ताकि आपको एक अनुमान हो जाए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या जो हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। देखिए, ये लेटेस्ट है 2017 के मेन्स में पूछा गया है, जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में, जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लेकिन जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसका जो रोल पूछा गया है वो अकाउंटेबिलिटी के संदर्भ में पूछा गया है, जवाबदेही के संदर्भ में, जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे। इसके ठीक एक साल पहले मित्रों 2016 में जो एक प्रश्न पूछा गया, आप देखिए कि वो क्या पूछ रहे हैं। विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभाविता तथा शासकीय तंत्र में जन सहभागिता अन्योन्याश्रित होती है, भारत के संदर्भ में इनके बीच संबंध पर चर्चा कीजिए। इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम एट वेरियस लेवल्स एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस सिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट। डिस्कस देयर रिलेशनशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। अब आप देखिए कि जो जन सहभागिता की बात कर रहे हैं, तो जन सहभागिता कैसे होगी, सरकार में जन सहभागिता कैसे हो सकती है। ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबिलिटी, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सरकार में या प्रशासन में जन सहभागिता के ही एक प्रकार के टूल्स हैं। आपको इस तथ्य को भी समझना होगा। तो मित्रों, ये मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स पर, जो आपको सीधे सीधे मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप अपने जरूरत के हिसाब से देख लीजिएगा। ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, कुशल चक्रवर्ती, भूपेंद्र सिंह ठाकुर बैतूल मध्य प्रदेश से, और शिवानी गहरवार। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।